अरमान के जाने तक सभी लोग खामोश थे, लेकिन अरमान के जाते ही सभी जोरों से हल्ला करने लगे। ध्रुव और आहान आस्था के आसपास मंडरा रहे थे, सभी खुशी खुशी उसका स्वागत कर रहे थे। सुमित और आकाश हल्की सी मुस्कान के साथ आस्था के पास आए। आकाश आस्था की ओर देखकर बोला, हमें बहुत खुशी हुई आज कि आप सही सलामत घर आ गईं, वेलकम होम। इतना कहकर आकाश अलग हो गया। रश्मि ने गहरी नज़रों से आकाश को देखा, पर अगले ही पल अपनी नज़रें हटा ली। आकाश ने उसकी मोहब्बत की बेइज्जती की थी, तब से उसने सोच लिया था कि वो आकाश के सामने अपनी मोहब्बत की भीख नहीं मांगेगी। वो अनाथ जरूर थी, लेकिन आत्मनिर्भर थी। उसने अपने दम पर अपनी पहचान बनाई थी। अपनी बेइज्जती वो कैसे होते हुए देख सकती थी? तभी अरमान, जो उस वक्त अपने कमरे में चला गया था, बिस्तर पर बैठते ही अजीब सा महसूस कर रहा था। उसका कमरे में मन नहीं लग रहा था। वो कभी इधर उधर टहल रहा था, कभी बालकनी में जाकर सिगरेट के लंबे लंबे कश ले रहा था, फिर कमरे में आ गया और अपना सिर पकड़कर सोचने लगा, ओ गॉड, ये मुझे हो क्या गया है? मुझे इतनी ज़्यादा बेचैनी क्यों हो रही है? क्यों मेरा दिल कर रहा है कि मैं उस लड़की के पास जाऊँ, उसके हालचाल पूछूँ और उस आफत को देखूँ कि वो क्या करती है? क्यों उसे बार बार देखने का मेरा दिल कर रहा है? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अरमान सिंघानिया, कोई भी तुम्हारी ज़िंदगी में महत्वपूर्ण नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ऐसे मुझे क्यों बार बार उस लड़की की याद आ रही है? कहीं ना कहीं अरमान खुद से ही उलझ रहा था। उसे यकीन हो गया कि इस हाल में जाना उसके लिए ठीक नहीं था। उसकी पर्सनालिटी, उसका आभा ऐसा था कि उसे हाल में जाने की इजाज़त नहीं देगा। अचानक अरमान ने अपना लैपटॉप चालू किया। हाल में लगे सीसीटीवी स्पाई कैमरों की रिकॉर्डिंग उसने अपने लैपटॉप पर लाइव देखनी शुरू कर दी। आस्था ये सब देखकर खुश थी। एक बड़ा सा केक वहाँ रखा हुआ था और ध्रुव आहान बोले, भाभी, हमने आपके सही सलामत आने की खुशी में केक मंगवाया है, आई होप आपको पसंद आएगा। आस्था मुस्करा दी, जल्दी में केक काटा और बारी बारी से सबको खिलाया। डॉक्टर रश्मि का साथ पाकर आस्था काफ़ी खुश थी। ऐसा लग रहा था मानो अब उसके अलावा कोई और भी महिला मौजूद हो। उसे अकेले घर में इतने सारे पुरुषों के बीच रहना पड़ रहा था, लेकिन अब उसे अच्छा लग रहा था। एकदम खुशहाल और खिली खिली सी फैमिली लग रही थी। तभी दादाजी आस्था की ओर देखकर बोले, बेटा सुनो, तुम और रश्मि दोनों एक ही कमरे में रहोगे। वो हमने जो घर का सबसे बड़ा वाला कमरा तुम दोनों के लिए तैयार करवाया है। आस्था ये सुनकर मुस्कुरा दी और जल्दी से बोली, क्या सच में दादाजी, हम उस राक्षस के साथ उसके कमरे में नहीं रहेंगे? वाकई हम डॉक्टर रश्मि के साथ रहेंगे। आस्था के बचपन जैसी बातें सुनकर सभी हैरानी से मुंह खोले आस्था की ओर देखने लगे। डॉक्टर रश्मि भी मन ही मन में मुस्कुरा रही थी। अरमान के माथे पर बल पड़ गए थे। वो अपने माथे पर हाथ फेरते हुए बोलने लगा, ओ तो इस आफत को मुझसे दूर जाने पर इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और ऊपर से ये मुझे राक्षस भी कह रही है, वो भी सबके सामने। लेकिन 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 मिसेज आफत अरमान सिंघानिया, इतनी भी क्या जल्दी है मुझसे दूर जाने की? अभी तो मेरा दिल तुम्हारे करीब आने को मचल रहा है और तुम मुझसे दूर जाने की बात कर रही हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मिसेज अरमान सिंघानिया, जस्ट वेट एंड वॉच, केवल 3 दिनों के अंदर अंदर तुम खुद मेरे कमरे में आने पर मजबूर हो जाओगी। अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया तो मेरा नाम अरमान सिंघानिया नहीं। कहीं ना कहीं अरमान लैपटॉप स्क्रीन की ओर देखता हुआ बोल रहा था। दादाजी आस्था से बोले, बेटा मैं जानता हूँ कि मेरा पोता काफ़ी ज़्यादा खड़ूस है। और क्या बोला तुमने, राक्षस? हाँ, वो एकदम खूनसार राक्षस टाइप भी है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम डॉक्टर रश्मि के साथ उनके कमरे में रहो। ये सुनकर आस्था लगभग उछलने लगी थी। उसने जल्दी से डॉक्टर रश्मि को गले से लगा लिया और बोली, हम तो बहुत खुश हैं दादाजी, आपने बहुत अच्छा फैसला लिया है, हम अभी चले जाते हैं, हमें आराम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप जानते हैं हमारा सिर कितना ज़्यादा चक्कर आ रहा है दादाजी, हमें तो बहुत चक्कर आ रहे हैं। और वैसे भी जब उस राक्षस सिंघानिया ने हम पर हाथ उठाया, हमें तो ऐसा लगने लगा था मानो कि हमारे कानों में सीटी बजने लगी हो, और कुछ मिनट के लिए तो हमारी आंखों के सामने अंधेरा ही छा गया था। उसके बाद तो हम लड़खड़ाकर न जाने कहाँ गिरे, हमें कुछ होश ही नहीं रहा। ये बोलते हुए आस्था अपनी उस गाल को छूने लगी जहाँ अरमान ने उस पर हाथ उठाया था। आस्था की कहानी सुनकर सभी के चेहरे मायूस हो गए। अरमान गुस्से से लैपटॉप स्क्रीन को घूरने लगा। तब आस्था बोली, दादाजी एक पल को तो हमें लगा था हमारी तो जान ही चली जाएगी और हम अपना सपना पूरे किए बिना मर जाएंगे। दादाजी ने उसके सर पर हल्का सा हाथ रखते हुए कहा, नहीं बेटी, तुम्हें कुछ नहीं होगा और हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। आस्था हल्की सी मुस्कुराते हुए बोली, सच्ची दादाजी, आप सच में हमें कुछ नहीं होने देंगे? आस्था की मासूमियत देखकर सभी मुस्कुरा दिए। आस्था में कूट कूट कर बचपना भरा हुआ था, लेकिन शादी के बाद वो सब कुछ खो बैठी थी। जैसे जैसे वो सामान्य हो रही थी, वैसे वैसे उसका बचपना भी लौट रहा था। दादाजी बोले, अच्छा आस्था बेटी, तुम जाओ, चलो जाकर अपने कमरे में आराम करो। रश्मि बेटी, आप भी जाओ, उन्होंने दोनों को आराम करने के लिए भेज दिया। रश्मि एक नजर आकाश की ओर देखते हुए आस्था को लेकर कमरे की ओर जाने लगी। ध्रुव और सुमित बोले, हमें लगता है कि अब हमें भी चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। दादाजी बोले, नहीं, कोई कहीं नहीं जाएगा। सब हैरानी से उनकी ओर देखने लगे और बोले, आप क्या कह रहे हैं दादाजी, हम सब क्यों नहीं जा सकते हैं? दादाजी बोले, क्योंकि आस्था बेटी आप सबके साथ काफी ज्यादा खुशी महसूस करती है, तो हम चाहते हैं जब तक आस्था बेटी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती तब तक आप में से कोई भी अपने विला में नहीं जाएगा। और वैसे भी जब आप लोग जाते हैं तो ये आहान भी आप लोगों के साथ चला जाता है। सभी आहान की ओर देखने लगे। आहान बेचारे समूह बनाकर बोला, तो दादाजी मैं क्या करूं? आकाश भाई, ध्रुव और सुमित भाई के साथ ही मेरा दिल लगता है, और वैसे भी अरमान भाई तो मुझसे बात ही नहीं करते हैं, और आपसे मैं क्या बातें करूं? आप तो मुझे अपनी 70-80 दशक की बातें बताएंगे, तो मुझे ध्रुव के साथ ही अच्छा लगता है, इसीलिए मैं आकाश भाई के विला में चला जाता हूँ। दादाजी आहान की ओर घूरते हुए बोले, अच्छा बेटा, 70-80 के दशक की कहानी सुनकर ही तो बड़ा हुआ है, और आज तुझे मेरी बातें 70-80 के दशक की लगती है? आहान जल्दी से बोला, नहीं नहीं दादाजी, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता था कि ध्रुव भाई मेरे दोस्त है ना, तो मुझे उन्हीं के साथ अच्छा लगता है। दादाजी बोले, हाँ, हम भी तुमसे यही कहना चाहते हैं कि जब तक आस्था ठीक नहीं होती तब तक तुम सब यहीं एक साथ रहोगे, और तुम सबके कमरे भी हमने तैयार करवा दिए हैं, तो तुम सब भी जाओ और जाकर अपने अपने कमरे में आराम करो। सब एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। उन सबका सामान पहले से ही अरमान सिंघानिया के घर में मौजूद था, उनका कमरा भी वहाँ हमेशा से तैयार ही रहता था। एक नजर सबकी ओर देखते हुए वो सब भी अपने अपने कमरे में आराम करने के लिए चले गए। दूसरी ओर वीर रायचंद की हालत काफी खराब थी। अरमान ने उसकी जान नहीं ली थी, लेकिन जोरों से उसका गला दबाया था जिससे उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा था। उसकी माँ वसुंधरा देवी बेचैनी से उसके वार्ड के बाहर खड़ी होकर अपने बेटे के ठीक होने का इंतजार कर रही थी। इस वक्त वसुंधरा देवी की आंखों में आंसू थे और वो गुस्से से रंजीत को डांट रही थी, आखिरकार कौन है वो जिसने मेरे बेटे की ऐसी हालत की है? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, जितना जल्दी हो सके उसके साथ मेरी एक मीटिंग फिक्स करवाओ और साथ ही साथ उसकी जान से मारने की सुपारी दे दो। मैं अपने बेटे के ठीक होने से पहले पहले उस आदमी की मौत अपने बेटे को तोहफे के रूप में देना चाहती हूँ।
वसुंधरा देवी का खतरनाक हुक्म सुनकर रंजीत हैरान हो गया था। वो क्या बताता कि उसके बेटे की हालत किसी आम इंसान ने नहीं बल्कि सिंघानिया ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक अरमान सिंघानिया ने की है, और उसकी सुपारी भला इस शहर में तो क्या पूरे देश भर में कोई नहीं ले सकता है। रंजीत को सोचता हुआ देखकर वसुंधरा गुस्से से उसकी ओर देखते हुए बोली, आप खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? बोलो, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? उसके साथ मेरी मीटिंग फिक्स कराओगे या नहीं? और जो मैंने बोला है कि उसकी सुपारी दे दो, किसी को पैसा दो और उसे मरवा डालो, तो क्या वो बातें तुम्हारी समझ में नहीं आई हैं? रंजीत हड़बड़ाहट में बोला, देखे मैडम, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अरमान सिंघानिया की जान लेना इम्पॉसिबल है, पूरे देश भर में कोई भी उसकी जान नहीं ले पाएगा। रंजीत ने अरमान सिंघानिया का नाम लेते ही वसुंधरा को अरमान का नाम अच्छी तरह से याद आ गया। अरमान के एरोगेंट बिहेवियर की खबरें हर रोज टेलीकास्ट होती रहती थीं। अरमान सिंघानिया का गुस्सा उसके गुस्से से पूरा देश वाकिफ था। वसुंधरा कुछ पल कॉरिडोर में इधर उधर घूमती रही और बोली, आखिरकार है कौन ये अरमान सिंघानिया और दिखता कैसा है? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। चलो, वो जो कोई भी हो, क्या वो मुझसे मीटिंग तो कर ही सकता है ना? उससे अपॉइंटमेंट लो, रंजीत ने कहा। आई एम सॉरी मैडम, लेकिन उसने रायचंद इंडस्ट्रीज के किसी भी आदमी से पहले ही मिलने से मना कर दिया था, तो उनसे मीटिंग नहीं हो पाएगी। वसुंधरा गुस्से से आग बबूला हो उठी और बोली, मैं कुछ नहीं जानती, मैं उस इंसान की मौत देखना चाहती हूँ जिस इंसान ने मेरे बेटे की ये हालत की है। एक काम करो, अगर इस देश में कोई भी उसकी जान नहीं ले सकता है तो बाहर विदेश से आदमी बुलवाओ और उसकी सुपारी दे डालो, और वैसे भी डेविड याद है ना तुम्हें, डेविड से कॉन्टैक्ट करो।